शांति। फ्रांस के एक लेखक गे द मॉपैसेंट ने एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लिखी है जिसका नाम है द डायमंड नेकलेस, जिसमें एक महिला है जो बहुत गरीब है परंतु उसकी इच्छाएं बहुत है, उच्चाकांक्षाएं बहुत है। मैटिल्डा नाम की एक महिला है और छोटा मोटा सा कोई काम करती है और उसका पति किसी छोटे मोटे ऑफिस में क्लर्क है और वो दोनों अपना जीवन बसर कर रहे हैं, पर उसे पैसों की बहुत कामना रहती है और बहुत अच्छी तरह जीना उसका लक्ष्य होता है, परंतु हमेशा ही पैसों का अभाव रहता है, हमेशा ही तंगी रहती है। और एक बार एक ऐसा मौका आता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी होती है और उसके पति को भी वहां निमंत्रण मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, वहां पर उसके पति को भी निमंत्रण मिलता है। तो वो पति सोचता है मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊं, परंतु इतनी बड़ी पार्टी में जाना है, कपड़े तो अच्छे होने चाहिए, जितना पैसा उसके पास होता है वो उसे कुछ अपनी पत्नी के लिए कुछ वस्त्र खरीदता है, पर वो फिर भी खुश नहीं होती है। वो कहती है गहने कहाँ हैं, मुझे गहने तो चाहिए ना, इतनी बड़ी पार्टी में जाना है तो गहने कहाँ से आएंगे, गहने तो उनके पास होते नहीं है। तो वो महिला मैटिल्डा एक दूसरे महिला के पास जाती है, बहुत अमीर जो रईस है, फॉरेस्टियर। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उससे कहती है कि ऐसे ऐसे एक पार्टी है और जिसमें मुझे जाना है, और यदि आप मुझे कुछ गहने दे सको उधार तो वह कहती है ठीक है, मेरे पास एक डायमंड नेकलेस है, हीरे का हार है बहुमूल्य, वो मैं तुमको दे सकती हूँ। तो वो हीरे का हार तुम ले लो, जब काम होगा, काम हो जाएगा तो वापस दे देना। तो वो हार वो लेती है और बहुत खुश हो जाती है और फिर पार्टी में जाती है और पार्टी होती है, सब कुछ होता है, और जब घर वापस लौटती है तो देखती है ये हार गुम हो गया। अब इतना उसको टेंशन आ जाता है ये हार, और वो भी हीरो का, दुकान में जाके पूछती है कितनों का, कितने का होगा, तो उसको पता चलता है 40,000 रुपये का हार होगा। 40,000, अब उसका पति और वो अगले 10 साल तक इतनी उधारी लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो सारा कर्जा चुकता करने के लिए, क्योंकि हार तो वो ले लेती है 40,000 का और उसको वापस कर देती है, पर ये जो 40,000 की उधारी है, ये कहानी लिखी गई है जब वो के डी मॉपैसेंट था, 1884 में पब्लिश हुई थी ये न्यूज़पेपर में फ्रांस के, ये कहानी तब की है ये लिखी हुई। तो वो 40,000 रुपये चुकता करने के लिए इतनी उधारी लेते लेते कि कंगाल बन जाते हैं। वो दूसरों के घर में काम करती है, ओवर टाइम काम करती है, उसके पति 2-3 जगह काम करता है, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, फटेहाल जीते हैं उधारी चुकता करने के लिए। इतनी ज्यादा उधारी हो जाती है क्योंकि हार जो है, और एक दिन वो ऐसी सड़क पर बैठी हुई है, सर्द रात है, फटे कपड़े हैं, और वो जिससे उसने हार लिया था, मैडम फ्रंटियर फॉरेस्टियर, वो वहां से जा रही होती है, उसको देखता है ये कौन है, ये तो वही मैटिल्डा है, क्या हुआ। वो उसको पूछती तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया 10 साल के बाद। तो वो कहती है यदि सही बताऊं तो वो हार मैंने जो आपसे लिया था वो हार खो गया था, और जो नया हार दिया था वो हमने खरीद के आपको दिया था। वो कहती है, हे राम, वो हार तो नकली था 500 रुपए का, 500 फ्रैंक। और ये 40,000 रुपए जमा करते करते 10 साल बिता दिए। तनाव, भारीपन, तो ऐसा क्यों हुआ आप बताएंगे? क्या करना चाहिए था जिससे ये ना होता? क्या करना चाहिए था? पूछना चाहिए था, परंतु उसका अहंकार भी बहुत था, अभिमान भी बहुत था, कोई कम अहंकार नहीं था उसका। लोगों ने इस पर बड़ी बड़ी कहानियां लिखी है, बड़े बड़े फिल्में बनी है इस कहानी पर, नाटक बने हैं, और क्या कुछ हुआ है, और बहुत सारे सार निकाला है, सार तत्व, कि जैसे वो हार झूठा था, वो स्त्री भी झूठी ही थी, वो जो मैटिल्डा थी उसका अहंकार भी झूठा था, उसका अपना घमंड था, उसका अपना ये था। वो ये भी कह सकती थी कि वो खो गया, पर उसने कहा नहीं। और लोभ, और उसकी इच्छाएं कितनी ज्यादा थी, वेल्थ उसका बड़ा था कि मैं अच्छी सजी सवार के जाऊं पार्टी में, और उसके लिए यहां तक उसने हार भी ले लिया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, वो झूठा हार और झूठा व्यक्तित्व, रियलिटी और सत्यता, सत्यता और असत्यता, इन दोनों का बड़े गहरे अर्थ विचारकों ने, चिंतकों ने निकाले हैं। तो उसके वो 10 साल कैसे बीतते हैं? भार में, भारीपन में, तनाव में। लास्ट संडे की मुरली टीचर्स से मुलाकात में 3 बातें बाबा ने कही है, और जो दूसरी बात है उसमें से वो है टीचर अर्थात डबल लाइट, हल्कापन। ये भारीपन क्यों आ गया था उस मैटिल्डा को? कहीं ना कहीं दिखावा था। भारीपन क्यों आ गया था? लोभ था। भारीपन क्यों आ गया था? ऑनेस्टी नहीं थी। वो चाहती तो तुरंत जाके बोल सकती थी ऐसा हो गया, परंतु वो उसके अहंकार को चोट होती, कहीं ना कहीं अहंकारी भी थी वो, कहीं कहीं झूठ था उसके अंदर। हाँ, दिखावा जाना ज्यादा चाहती थी, डर भी बहुत था, सारी बातें थी। तो जब डर होता है और जब दिखावा होता है, जब अहंकार होता है, तब भारी बनाता है मन में। बाबा कह रहे हैं हल्के बनकर सेवा करो। वो कारणों को ढूंढना है जो मुझे भारी कर देते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो मुझ में भारीपन, हैवीनेस लाता है, टेंशन लाता है? और जहां भारीपन है, जहां टेंशन है, वहां सफलता हो ही नहीं सकती। सॉरी, ये दूसरी नहीं, तीसरी बात है। यहां पर एक पॉइंट बाबा ने कही है, सेवा की सफलता में 2 बातें चाहिए, एक तो डबल लाइट और दूसरा बाप की याद। डबल लाइट और बाप की याद, ये 2 चीजें जब होगी तब सेवा में सफलता होगी। अब सेवा में यदि असफलता हो रही है तो कारण है जरूर भारीपन है। कौन सी चीज का भारीपन है? जरा सा दिखावा है उसमें, शो ऑफ है। हम देखना दिखाना चाहते हैं कि दूसरों को ये पता चले, और वो दिखावे के चक्कर में ही भारीपन है। किसी को पता ना चल जाए हमारा वास्तव में ये सब हम में है ही नहीं, पर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं कि हमारे में ये सब है। हम भी कुछ कई लिंबू टिंबू नहीं है, हम भी कोई छोटे मोटे नहीं है, हम भी कुछ है, हमारा भी कोई कम सेवा नहीं है, हमारी भी बड़ी सेवाएं है। तो दिखावा है कहीं ना कहीं। तो जहां दिखावा होगा सेवा में, वहां भारीपन होगा। जहां अहंकार होगा सेवा में, वहां भारीपन होगा। जहां झूठ होगा सेवा में, वहां भारीपन होगा। जहां ऑनेस्टी नहीं होगी सेवा में, वहां भारीपन होगा। जहां बाप के साथ क्लियर कट संबंध नहीं होगा, तब भारीपन होगा। तो बाबा कह रहे हल्के रहो, हल्का, हल्के व्यक्ति नहीं रह पाते क्योंकि दोष लगाते हैं दूसरों पर, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमको ये समझता नहीं है, तब भी भारी हो जाते हैं, दोष लगा लगा के भारी होते हैं दूसरों पर, या फिर खुद पर दोष लगाते वो भी भारी करते, गिल्ट कॉन्शियसनेस, सेल्फ विक्टिमाइज करते, खुद खुद का शिकार, आत्मशोषण करते, दूसरों को भारी करते करते खुद ही भारी हो जाते हैं, दूसरों को डांटते डांटते, दूसरों को ठीक करते करते खुद ही खुद बिगड़ जाते, दूसरे के सुधारने के चक्कर में कहां भटक जाते, समझ में ही नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता। आज की मुरली में सब भूल जाते हैं। इतने मीठे बाप को भूल जाते हो, इस जैसा मीठा कोई है क्या, फिर भी भूल जाते हो। सेवा में सफलता के दो आधार है, पहला हल्कापन और दूसरा याद। जहां याद होगी वहां हल्कापन होगा, जहां विस्मृति होगी वहां भारीपन होगा। हल्का रहना, और हल्के रहने के लिए श्रीमत को पकड़ के रखना होता है। श्रीमत छोड़ी कि भारीपन आएगा, मनमत पर गए कि भारीपन आएगा, परमत पर गए कि भारीपन आएगा। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है कि किसने मुझे भारी किया है, क्यों भारीपन लगता है और कब लगता है, किन व्यक्तियों के साथ भारीपन लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता है भाग जाओ इनके पास, ये ठीक नहीं है, लोग अपने टाइप के नहीं है, कि अपने ग्रुप वाले नहीं है, कहां है वो हमारे वाले, उनकी तलाश, ये ठीक नहीं है, ये जगह भी ठीक नहीं है, भारी बन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा कहीं पर भी रहे और हल्का रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी किन्हीं भी लोग टाइप के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाए, ज्ञानी अज्ञानी का संबंध ही नहीं रहा, अहंकारी से अहंकारी के साथ भी कौन एडजस्ट हो सकता है जो निरंकारी है? हाँ, जैसे हमारे चिमन भाई जी कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते एक है जहां निरंकारिता है वहां सब जगह एडजस्टमेंट हो जाता है, और जहां जरा भी अहंकार है वो अहंकार स्वीकार नहीं करता। जो माता एकदम निरंकारी है 10 माताओं के साथ एडजस्ट हो जाती है, दूसरी बोलेंगे मैं इन 20 माताओं के वाले कमरे में बिल्कुल नहीं रह सकती, ये कोई बहुत बड़ा काम है, ये तो सबसे मुश्किल काम है, ये आए थे यहां योग करने और शांति के लिए, यहां तो और ही अशांति हो गई, रोज लड़ाई ही चलती है, ये लोगों ने भारी कर दिया, और व्यक्तियों ने भारी कर दिया, सेवा ने भारी कर दिया, हर चीज भारी कर देती है, टाइम पर पहुंचना है ये संकल्प भी भारी कर देता है, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भारी, कितना भारी बने, मन भारी है। तो सेवा में सफलता तब तक नहीं होगी जब आंतरिक हल्कापन, इनर लाइटनेस नहीं होगी। तो ये सबसे, ये तीसरी बात बाबा ने टीचर से कही 3 बातों में, कि तुम्हें सेवा में सफलता चाहिए तो 2 चीजें चाहिए, याद और हल्कापन, भारीपन नहीं। वो भारीपन हटाओ, और भारीपन आ रहा है, उसने उस मैटिल्डा में ने 10 साल तक काम करती रही, चलो पहले दिन नहीं बताया, दूसरे दिन बताना चाहिए था, दूसरे दिन बताया नहीं, 1 महीने के बाद बता देना चाहिए था, 1 महीने के बाद नहीं, 1 साल के बाद बता देना चाहिए, ताकि हार भाई गुम हो गया था, ये हमने अपने पैसों से हार बनाया है। पर वो 10 साल तक, वो भी उसने बताया नहीं, वो तो दिख गई दूसरी जिससे हार लिया था, उसने देख लिया, और ऐसी ट्रेजिक एंडिंग। ये जो लेखक था ना, गेडी मॉपसंट, उसकी सारी कहानियों में ऐसा खतरनाक ही अंत होता है, एकदम क्लाइमैक्स वाला, जो लास्ट में पता चलता है बात क्या है। इसके लिए उसकी सारी कहानियां मूवीज बना दी है लोगों ने, लोगों को यही तो चाहिए, सीखना है पर इन सब चीजों से भी। तो भारीपन नहीं। उसके बाद में सबसे पहली चीज जो बाबा ने टीचर्स को कहा है वो है बैलेंस। क्या कहा? बैलेंस होगा तो क्या मिलेगी? ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, एक आशीर्वाद और एक वरदान, दोनों में क्या अंतर है? नहीं नहीं, हम दो चीजें पूछ रहे हैं, एक है आशीर्वाद एक है वरदान, दोनों में क्या अंतर है? आशीर्वाद और वरदान, आशीर्वाद बड़ों से मिलता है, वरदान भी मिलता है, जनरल में वरदान और आशीर्वाद में क्या अंतर है? क्या क्या कोई तो अंतर क्या हुआ फिर? और वरदान उसके कंपैरिजन में तो अंतर क्या है? आशीर्वाद स्वतः नहीं मिलता और वरदान स्वतः मिल जाता है। वो लोग तो कितनी तपस्या करते थे, बाद में वरदान मिलता था, तो फिर अंतर क्या हुआ? दोनों में मेहनत है, वरदान मिलने के बाद नहीं, पर वैदान वरदान के पहले तो मेहनत है, पर वरदान के पहले मेहनत है ऐसा भी जरूरी नहीं है, किसी किसी को बिना मेहनत के भी वरदान मिल जाता है। आशीर्वाद इंस्टेंट और वरदान डिलेड। क्या हाँ तो तथास्तु पर अंतर क्या है आशीर्वाद और वरदान? वरदान में भविष्यवाणी है, वरदान में सफलतामूर्त भव, अष्ट पुत्रवती भव। वरदान मतलब वरदान, भारी बने वरदान में सफलता है। वरदान कुंभकर्ण को भी वरदान मिल गया था सोने का, तो वरदान कौन देता है, आशीर्वाद कौन देता है? वरदान भगवान देता है, देवी देवताएं देते हैं, या गुरु भी देता है, और महाभारत में दिखाया है भीष्म के पिता ने उसको वरदान दे दिया। अब वो इतना शांतनु महान कैसे बन गया पता नहीं, कि उसने कैसे वरदान दे दिया इच्छा मृत्यु का। तो वरदान कोई हायर ऑथोरिटी द्वारा मिलता है, और आशीर्वाद तो जो भी चरणों में झुक जाए, चलते फिरते आशीर्वाद, आशीर्वाद देना तो बिल्कुल बड़ों का ये जैसे वो अधिकार है। जैसे महाभारत युद्ध के पहले, युद्ध चालू होने वाला है, दोनों सेनाएं खड़ी है, युधिष्ठिर अपनी सेना से आता है इस ओर और पितामह भीष्म के चरणों में झुकता है, वो कहता है विजयी भव, उसके विरुद्ध युद्ध करने वाला है। द्रोणाचार्य को झुकता है, वो कहता है विजयी भव, फिर वो कृपाचार्य को झुकता है विजयी भव, वो जाता है। दुर्योधन कहता है वाह रे मेरा भाग्य, अगर ऐसे सेनापति मेरे पास है तो मेरी तो विजय हो ही पड़ी है, ये शत्रु को विजय का वरदान दे रहे मैं तो धन्य हो गया ऐसे महाभारती को पाकर कि ये उसको मेरे शत्रु को विजय का वरदान दे रहे। तब भीष्म पितामह उससे एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं अरे पुत्र इतना भी तुम्हें समझ नहीं आता है, वो हमारे चरणों में झुका था, और कोई चरणों में झुकता है तो उसे विजय वरदान आशीर्वाद ही दिया जाता है, अगर तुम भी उसके चरणों में झुकते युधिष्ठिर के तो वो भी तुम्हें विजय का ही आशीर्वाद देता, वरदान देता, वो आशीर्वाद था, आशीर्वाद देता। आशीर्वाद तो डेली का है रूटीन, वरदान तो वंस इन ब्लू मून, कभी 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 बहुत कोई एक हाथ करे बहुत सारा तो वरदान मिल जाता है भगवान के द्वारा। हमें तो रोज मिलता है वो दूसरी बात है, पर हम संसार की अभी बात कर रहे हैं, वो हमारे वरदान रोज मिलते हैं इसलिए तो उसका महत्व कम हो गया, इसलिए उसका महत्व ही कम हो गया है। तो वरदान और आशीर्वाद कौन दे रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम संतुलन रखोगे, बैलेंस रखोगे, तो क्या मिलेगा? ब्लेसिंग मिलेगी, ब्लेसिंग अर्थात वरदान मिलेगा, सफलता मिलेगी, फिर सफलता होगी। तो दोनों चीजें हैं, अभी भी बहुत सारी बातें दोनों में समान है, कुछ बातें दोनों में भिन्न है, पर वरदान में एक भविष्यवाणी है, वरदान मिलने के बाद फिर कुछ नहीं, वो फाइनल हो गया। आशीर्वाद ऐसी चीज है कि अगर मैंने आशीर्वाद दिया, जैसे जितने लोगों को आशीर्वाद दिया गया था महाभारत में वो सब मर गए, आयुष्मान भव का जिन जिन को आशीर्वाद दिया वो सब मर गए। इसके लिए गांधारी ने दुर्योधन को विजय का आशीर्वाद दिया ही नहीं, अंत तक नहीं दिया, पर हां वहां पर सभी को आयुष्मान भव का आशीर्वाद तो सबको था। हां बिल्कुल, इसमें एकदम कंफर्मेशन है। ये हो गया मतलब अब कुछ नहीं करना है, इसमें डाउट है थोड़ा दोनों में भी है वैसे तो। वैसे तो बाप दादा से भी पूछा गया था कभी, बाबा ने कभी कहा था, बाबा ने ब्रिजभुवन भाई जी ने शायद पूछा था बाबा से कुछ चीज, तो बाबा ने कुछ बताया किसी के स्वास्थ्य के बारे में, फिर बाबा ने उन्होंने पूछा कि बाबा आपने उनके बारे में भी कहा था कि वो ठीक हो जाएगा, उसके तो बाद में डेथ हो गई तो शरीर छोड़ दिया उसने, आपने तो कहा था बच्चा ठीक हो जाएगा उसका क्या हुआ वो तो गया आश्वासन, तो वो तो वो वरदान नहीं है वो तो चलो डॉक्टर की तो बात अलग है, तो भगवान तो वैसे तो उसके बड़े सूक्ष्म अर्थ है। तो आशीर्वाद और वरदान बाबा यहां इस तरह की बातों में ज्यादा किसी के कार्मिक अकाउंट्स में कभी नहीं जाते, बाबा को पता है आत्माएं हैं, शरीर वस्त्र है, वो तो छूटना ही है। आज भी बोला इस शरीर में इतना मोह क्यों रखते हो, शरीर को चाहिए क्या, दो रोटी चाहिए फिर काहे का फूरना, झंझट में क्यों जाते हो फालतू के, इतना ही चाहिए उसको। तो बाबा आशीर्वाद तो देते, वरदान कोई अलग चीज होती है, बड़ी सूक्ष्म चीज होती है वरदान। तो जहां हम बात कर रहे थे बैलेंस की, वहां क्या होगा, ब्लेसिंग मिलेगी। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी एक एक बाप एक रस्तिति और एक मत, जब ये होगा तो सफलता होगी। तो ये तीन बातें उस मुरली में बाबा ने टीचर से मुलाकात में की। तो हम बात करेंगे अभी बैलेंस की, किस किस चीज का बैलेंस चाहिए ब्राह्मण जीवन में। और बैलेंस मतलब दो चीजें चाहिए, बैलेंस, बैलेंस इज ब्लेसिंग, बैलेंस अर्थात संतुलन। ताली किसके लिए बजती, जो रस्सी पर चलते हैं, रास्ते पर चलने वालों के लिए कभी ताली नहीं बजती। किसके लिए, किसके लिए बजती है, जो रस्सी पर चलते हैं। एक पिता और एक पुत्री थी, वो दोनों नट थे, कलाकार थे, रास्ते पर कला करते थे, कलाबाजी। वो ऐसे एक रस्सी और दो लकड़ियां, उसमें से वो पिता चलते थे, फिर धीरे धीरे वो लड़की आती थी, उनकी बेटी उसके कंधों पर चढ़ती थी और एक डंडा रखती थी और उसके ऊपर मटके, ऐसा वो खेल करते थे। तो एक दिन पिता अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम एक काम करो, तुम मुझ पर ध्यान रखना, मैं तुम पर ध्यान रखूंगा ताकि हम गिरे ना, तुम मुझ पर ध्यान रखना, मैं तुम पर ध्यान रखूंगी। वो खड़ा होता था रस्सी पर, फिर धीरे धीरे वो चढ़ती थी उसके कंधों पर और फिर उसके उसके सिर पर एक डंडा और उसके ऊपर मटके, ऐसा वो खेल करते थे। तो कहता है, यू लुक आफ्टर मी आई लुक आफ्टर यू। तो बेटी कहती है, नहीं पिताजी, आप अपने ऊपर ध्यान रखो, मैं अपने ऊपर ध्यान रखो ताकि हम अपने आप बैलेंस मेंटेन कर सके। बैलेंस के लिए हमें दूसरे ऊपर ध्यान नहीं रखना होता है, किस पर ध्यान रखना होता है, अपने ऊपर ध्यान रखना है। तो वो कहता है, तुम मेरे ऊपर ध्यान रखो ताकि मैं गिरूं ना, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान रखूंगा ताकि तुम गिरो ना। वो कहते हैं, नहीं पिताजी, आप अपने ऊपर ध्यान रखो, मैं अपने ऊपर ध्यान रखूंगी ताकि हम दोनों गिरे ना। चाहे ये पिता और बेटी है या पति और पत्नी, दोनों अपने अपने ऊपर ध्यान रखे, मैं तुम पर ध्यान रखता हूं, तुम मुझ पर ध्यान रखो, ये नहीं। हर एक अपने अपने ऊपर जब ध्यान रखेगा तब क्या होगा, बैलेंस। तो इस ब्राह्मण जीवन में 16 प्रकार के बैलेंस है। सबसे पहला शारीरिक, फिजिकल बैलेंस, इसमें तीन चीजें हैं, भोजन, नींद और व्यायाम। भोजन, फूड, स्लीप और एक्सरसाइज। ब्राह्मण तो बन गए परंतु भोजन की तरफ ध्यान नहीं, भोजन का बैलेंस नहीं रखा है, बहुत खा रहे या बिल्कुल नहीं खा रहे, या कम खा रहे या गड़बड़ कर रहे। जब ऐसा होगा तब ब्राह्मण जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होगी। दूसरा नींद, बहुत सो रहे और या बिल्कुल नहीं सो रहे तो भी खुशी नहीं होगी। व्यायाम, व्यायाम करना ही बंद कर दिया या खाली व्यायाम ही करने लग गए, बॉडी बिल्डर ही बनने लगे, जिमनेशियम बनने की कोशिश कर, जिमनास्ट बनने की कोशिश कर रहे, एक एक घंटा एक्सरसाइज, दो दो तीन तीन घंटा एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डर बनने आए यहां कि स्पिरिचुअल बिल्डर बनने आए, उसका ही कंफ्यूजन है, उसी में लगे हुए हैं, दिन रात वही चर्चा है, जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ज्ञान योग के लिए टाइम नहीं है और यही सब चीजों में लगे हुए हैं, डिप्स और वो क्या क्या कर रहे हैं तो ये सारी चीजें में लगे हुए, इन तीन चीजें है फिजिकल में आएगा। फिर है मेंटल बैलेंस, मेंटल में दो है, एक है भावना और विवेक, इसका भावना, इसका बैलेंस बहुत जरूरी है, एकदम भावुक नहीं हो जाना या तो एकदम केवल तर्क तर्क लॉजिक लॉजिक रीजनिंग रीजनिंग में नहीं चले जाना, दोनों चीजें चाहिए जीवन में, भावना भी चाहिए तो तर्क भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, रीजन भी चाहिए, साइलेंस भी चाहिए तो साइंस भी चाहिए, तो ये एक बैलेंस। फिर होता है मास्टर और बालक, बालक सो मालिक, कहां बालिक बन, मालक मालिक बनना है और कहां बालक बनना है, ये मीटिंग्स के लिए पापा कहते हैं, मीटिंग्स में सजेशन देना है तो मालिक बनकर दो, जब सबने राय ले ली और राय कर ली तो फिर छोटा सा बच्चा बनकर उसको स्वीकार कर लो और सेवा में आगे बढ़ो, नहीं तो ये मत सोचना कि हमने तो कहा था ये होना चाहिए और हमारी पॉइंट ली नहीं किसी ने, हम नहीं आएंगे अभी, अगली बार करो तुम लोग जो करना है सेवा, हम नहीं देंगे सहयोग, हम तो चले, अब देखते हैं तुम लोग कैसे करते हो। फिर उसके बाद में है, ये हो गए तीन चार पांच, फिजिकल में तीन, मेंटल में दो, पांच प्रकार के बैलेंस। उसके बाद में तीसरे प्रकार स्पिरिचुअल बैलेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला बैलेंस है लव और लॉ, लव भी चाहिए तो लॉ भी चाहिए, लव ऐसा ना हो कि कायदे कानून ही भुला दे, श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देना, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस इसमें भी चाहिए, कहां प्रेम स्वरूप बनना है और कहां लॉ स्वरूप धारण करना है, कड़े कायदे जो भी हमारे यज्ञ के नियम है उसको छोड़कर अगर हम केवल प्रेम में ही हो गए किसी के साथ तो दुखी हो जाएंगे। हाँ, श्रीमत पर रहते हुए ही सुख देना है किसी को, चाहे फिर ऊपर से दिखेगा थोड़े समय के लिए उसका दिल टूट रहा है, टूटने दो, उससे कुछ नहीं होगा, पर हम श्रीमत तोड़कर अगर किसी को सुख देते तो हम दोनों दुखी हो जाएंगे बाद में। दूसरा है लव और पावर, प्रेम स्वरूप तो बहुत बने ऊपर, शक्ति स्वरूप भी चाहिए, खाली प्रेम 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 से कुछ नहीं होता है, शक्ति स्वरूप चाहिए, पावरफुल, जहां विकराल रूप धारण करना है वहां विकराल रूप धारण करना है। लविंग और डिटैच्ड, न्यारा और प्यारापन, ये तीसरे प्रकार है, कहां बहुत प्रेम स्वरूप होना है और कहां एकदम से डिटैच हो जाना है, जहां प्रेम जहां डिटैच होना है और वहां किसी में जाके फंस गए, लगाव आ गया तो वहां तो दुखी हो जाएंगे फिर से। तो ये तीनों ही प्रेम संबंधित बैलेंस है, प्रेमी प्रेम और कानून, प्रेम और शक्ति, प्रेम और न्यारापन, तो न्यारा प्यारा, लव लॉ लव पावर, ये तीन प्रकार के बैलेंस है। उसके बाद में दो है ज्ञान योग से रिलेटेड, एक है ज्ञान योग, एक है योग और सेवा, कर्म और सेवा, कर्म और योग, एक है ज्ञान और योग का बैलेंस, ऐसे नहीं केवल ज्ञान 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 का ही चिंतन कर रहे हैं बस, उसी में बहुत रस आ रहा है, ज्ञान के चिंतन में ही बहुत रस है और योग छूट रहा है और शरीरपन अभ्यास ही नहीं कर रहे, तो ज्ञान भी चाहिए तो योग भी चाहिए, या फिर केवल योग ही लगा रहे बस, ज्ञान जीरो, ज्ञान का चिंतन ही नहीं, ज्ञान अर्थात खाली मुरली क्लास में जाओ, मुरली में बैठो, पॉइंट्स लिखो, किताब बंद, इसी को ज्ञान समझा है, चिंतन कुछ भी नहीं, टॉपिक निकाल नहीं रहे, मनन कर नहीं रहे, गहराई में जा ही नहीं रहे, तो केवल योग 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 कर रहे बस, तो ये भी सबसे पहला ये बैलेंस चाहिए, ज्ञान और योग। दूसरा बोला योग और कर्म और योग, कर्म और योग, कर्म करते समय योग, ऐसा नहीं कि कर्म करते समय इतने कर्म कॉन्शियस हो गए योग ही भूल गया, या तो योग में इतने ज्यादा चले गए कि आप कोई कहे ये सेवा करो तो एकदम से बर्डन, अच्छा दुश्मन लगता है वो जो हमको सेवा करने बोलते हैं, इनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा महत्व पूरे योग संसार को योग में उसकी शक्ति से हमने थमा के रखा है और ये हमको ये कहते हैं ये थोड़ी लाइब्रेरी की सेवा करो, ये कोई इसके लिए आए कि हम यहां, ये किचन की सेवा, क्या ये भूले हुए है क्या? तपस्या सबसे बड़ी सेवा है, मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हमको ये छोटे मोटे, ये हमारी शान के खिलाफ है। अज्ञानी, अज्ञानी कही के नौकर चाकर है इनका पद, इनको तो योग की शक्ति का पता ही नहीं है, हम इतने महान योगी और हमसे ये सब झाड़ू लगाने का इस तो कर्म योग में इतना ज्यादा चले गए कि कर्म ही छूट गया, या तो कर्म में इतना ज्यादा चले गए योग के लिए, टाइम कहां है? बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा, सेवा पहले होती है यहां, सेवा योग करने आए या सेवा करने आए, ये सेवा फर्स्ट होती है यहां पर, बाकी सब छोड़ो सेवा करो दिन रात, सेवा, सेवा से दुआएं मिलेगी, सेवा से जो बनना है भाग्य तुमको सेवा से होगा। हाँ तो ये दोनों चीजें नहीं होता है, ये दोनों चीजों का बैलेंस चाहिए। ऐसा कहते हैं पर होता कुछ नहीं है, खाली सेवा करते हैं, हमारी सेवा बहुत रूप से कहीं ना कहीं सोशल सर्विस रह जाती है बस, जैसे संसार के लोग सोशल सर्विस करते हैं वैसे, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, ट्री प्लांटेशन और ये सारा, हमारा भी एक तरीके से ऐसा ही हो जाता है। जैसे कोई एक बहन थी ट्रेन में बैठी थी, बड़ी बहन थी जिसने ये अनुभव सुनाया, तो उस समय तो वो नई नई ज्ञान में आई थी, तो सामने एक बड़ी किसी दूसरे धर्म की कोई महिला बैठी थी, तो ये उसे बिल्कुल सेवा ज्ञान सुनाने लगी, नशे से ज्ञान सुनाने लगी, ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो उसने कहा तुम ये मुझे क्यों सुना रही हो? कहती है कि मैं ज्ञानी बनाना चाहती हूं सबको। तो कहती है ये तुम जो सुना रही हो ना ये ज्ञान नहीं, ये प्रचार है केवल, तुम ये जो कुछ सुना रहे हो ना, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये परम धाम, ये पांच स्वरूप, ये चक्र, ये केवल तुम प्रचार कर रहे हो, ज्ञान का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ऐसा होता ही नहीं है, ज्ञान होगा ना तुम इस तरह से नहीं प्रचार करती, ये तुम प्रचार कर रही हो। तो बहन ने कहा रे ऐसा धक्का लगा उस दिन, बड़ी चोट लगी अंदर गहरी जब उससे ऐसा सुना मैंने, तो ये दो का बैलेंस जरूरी है, ये एक दूसरा विषय है, इस पर कभी और बात करेंगे। क्योंकि ब्राह्मणों में एक सूक्ष्म दोष है कहीं ना कहीं, और वो है ज्ञान का अहंकार। हम जानते हैं भगवान को, जानते हैं आत्मा को, जानते हैं, तुमको हम ज्ञानी बनाएंगे। बाबा वही तो कहा ना, ये थोड़ा मुरलियों में ही ऐसी बातें आ जाती है कि तुम जानते हो दुनिया वाले नहीं जानते, किसी को कुछ पता नहीं, तुम्हें पता है, ये भक्ति मार्ग वाले छाछ खाते हैं तुम मक्खन, ऐसे बातें, ऐसा नशा चढ़ जाता है जो भी आता है, क्योंकि सोच तो मुरली है, वहीं से नशा चढ़ता है और उसी के आधार पर निकल पड़ते हैं। आज भी कहा एरोप्लेन से पर्चे फेंको, ये करो वो करो, सब आता है मुरली से ही पता चलता है, पर हर व्यक्ति ने किस तरीके से लिया है उसको, क्योंकि खाली उतना ही नहीं बताया बाबा ने, वो जो भगवान ये कह रहा है वो ये भी कह रहा है कि तुम्हें निरंकारी होना है, वो जो भगवान ये कह रहा है वो ये भी कह रहा है कि सेवा करो पर उसका वर्णन नहीं करो, वो भगवान ये भी कह रहा है कि जैसे ब्रह्मा ने अपने आप को बिल्कुल निरंकारी कर दिया वैसे तुम भी कर दो, तो वो दोनों बातें कह रहा है, पर सुनने वाले समझने वाले इतनी सूक्ष्म बातें कहां पकड़ पाते हैं, वो तो स्थूल स्थूल पकड़ लेते हैं, और नशा ऐसा चढ़ जाता है कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये पूरी ट्रेन जो जा रही है ना आबू पहुंचने से पहले एक भी डब्बा नहीं छूटना चाहिए, एक को पकड़ पकड़ के उसको ज्ञान पिलाऊंगा जबरदस्ती, चाहे उसका कल्याण हो या ना हो, मेरी प्रजा तो मुझे बनानी है, आबू पहुंचने तक मुझे राजा बनना ही है किसी हालत में, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना ये सब मुरलियों में आए, पर उसी मुरली में और भी कुछ बातें आई है। ये ऐसी बातें हैं, इसके बहुत सारे डायमेंशंस आयाम है, एक ही आयाम नहीं है, ये एक आयाम है। सुनाओ, जैसे एक भाई ट्रेन में बैठा था बीके, तो दूसरा भाई आया सुनाने लगा ज्ञान, तो उस भाई को पूछा कि तुम ज्ञान नहीं सुनाते दूसरों ट्रेन में, बाबा ने कहा है ट्रेन में ज्ञान सुनाओ। वो कहता है मेरे पास जो ज्ञान है ना वो रत्न है, मैं पत्थर पर नहीं फेंकूंगा। ये पत्थर है, सुपात्र को देखकर सुनाऊंगा, ये पत्थरों पे अपना टाइम वेस्ट करूं क्या मैं? ये भी बात है, फिर वो सत्य है तो ये भी सत्य है, तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, कोई एक चीज नहीं है इसमें। तो ये हो गए पांच, ये पांच, तीन प्रेम से संबंधित, दो योग से संबंधित, उसके बाद है साधन और साधना, उसके बाद है साधना और सेवा, उसके बाद है सीरियसनेस और एंटरटेनिंग, ये तीन। सबसे पहला है साधन और साधना। साधन अर्थात मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, मीडिया, ये सारे साधन है, और सेवा। सेवा और साधन बहुत अच्छा बैलेंस जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। पर खाली साधनों पर ही निर्भर हो गए तो वो सेवा सेवा नहीं है फिर, या फिर केवल सेवा कर रहे और कहते हैं ये मोबाइल वोबाइल से हमको कोई लेना देना नहीं, सब माया है, नहीं तो इसका महत्व हम समझ नहीं रहे। कितना फास्ट इससे संदेश चला जाता है सब जगह, एक प्रोग्राम है सेंटर पे मैसेज भेज दो अपने आप सबको पता चल जाता है, बजाय इसके कि एक एक को पकड़ के फोन करो, वो फोन लगता नहीं, मिलता नहीं, जो भी है। तो दोनों चीजें जरूरी है, इसमें बैलेंस चाहिए, साधन और साधना। फिर है सेवा और साधना, एक तरफ सेवा है और दूसरी तरफ है हमारी, नहीं सॉरी, स्वस्थिति और सेवा, सेकेंड इज स्वस्थिति और सेवा। स्वस्थिति ही सेवा में बिगड़ रही है, ओरिजिनल स्टेज जो है हमारी स्वस्थिति और सेवा, सेवा में इतना ध्यान दे रहे हैं कि स्व की सेवा के लिए टाइम ही नहीं है, विश्व की सेवा में लगे हुए और स्व की सेवा हो ही नहीं रही है। तो स्वस्थिति और सेवा, तीसरा है सीरियसनेस और एंटरटेनिंग, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस, रमणीक भी चाहिए गंभीर भी चाहिए, जहां रमणीक होना है वहां रमणीक, जहां गंभीर होना है वहां गंभीर, उल्टा नहीं हो जाना है, जहां गंभीर होना है वहां गंभीर ही होना है, और जहां रमणीक चाहिए वहां रमणीक भी होना है, दोनों चीजें चाहिए जीवन में। तो ये तीन, उसके बाद में लौकिक और अलौकिक। लौकिक में इतना चले गए कि अलौकिक ही भूल गया, आए थे अलौकिक परिवार में पर लौकिक से अटैचमेंट अभी भी है, अभी भी फोन चालू है, अभी अभी उनके पास बार बार जाना चालू है, अभी भी उनसे उधर दुख होता है तो इधर दुख, उधर बीमारी तो इधर बीमारी, उधर किसी की मृत्यु तो इधर दुख, ये दोनों। और दूसरा है अलौकिक में इतना चले गए कि लौकिक को ही भूल गए, अलौकिक में इतना चले गए कि लौकिक का ये ख्याल नहीं रहा है कि इनकी भी सेवा करनी है, इनका भी कल्याण होना चाहिए, उनकी भी सूक्ष्म सेवा हमको करनी थी, उनके प्रति भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लौकिक अलौकिक। फिर उसके बाद में कथनी करनी, जो हम कहते हैं वो करे, ये हो गए 16 हो गए ना, ये और भी कोई है, हो गए पूरे। फिजिकल में 3, मेंटल में 2, 5 हो गए, और ये कितने हैं 11। ठीक है, तो लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, ये कुछ बातें बताए। तो इस टीचर्स की मुलाकात में 3 बातें थी, सबसे पहली थी बैलेंस रखो तो क्या मिलेगी, ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी और वरदान भी। दूसरी बात थी एक मत, एक बाप, एक रस, और तीसरी बात थी सेवा में सफलता के 2 आधार, कौन कौन से, याद और डबल लाइट, हल्का रहना, हल्का रहने की कोशिश करना है सारे दिन भर, किसी की बातों को पकड़ के नहीं रखना, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए इसको, ये क्यों ऐसा करता है, ये हमेशा जिसने बोल दिया वो बोल दिया, हम किसी के मुंह पर पट्टी नहीं लगा सकते, हल्का रहना, जिसने बोल दिया बोल दिया, ठीक है, लाइट, हल्कापन। और इस बात में हमें कभी कभी लगता है बाहर वाले लोग ज्यादा हल्के रहते हैं, बीकेएस भारी है, बाहर वाले लोग भूल भी जाते हैं, यहां तो पकड़ के रखते हैं, यहां पकड़ के रखते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा था 10 साल पहले, अब तक नहीं भूले उसको। ज्ञानियों की माया है यहाँ, यहाँ एक्सपेक्टेशंस ज्ञानियों से बहुत अधिक होती है। हमारे लक्ष्य है ज्ञानी अर्थात एकदम ब्रह्मा बाप समान रहना चाहिए, इतनी हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। उसने जरा भी मिस्टेक हमको टॉलरेट नहीं हो पाती। बाहर वालों को तो हम बड़े बड़े पाप माफ कर देते, पर इनका छोटा सा भी, कोई हमारे सामने बैठ के सो रहा है अमृत वेला, जघन्य अपराध कर रहा है जैसे, इसको हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हम उसे माफ ही नहीं कर पाते। किसी का मोबाइल क्या बच गया बीच में, बस माफ नहीं कर पाते। एक बहन, बड़ी बहन, किसी सभा में गई बाहर क्लास लेक्चर लेने, सत्य घटना है, कौन था हमें भी नहीं पता, किसी ने बताया, और उसने इंस्ट्रक्शन दिया क्लास से पहले, सब अपना अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, बड़ी बहन कोई, सब अपना अपना मोबाइल बंद कर दो, क्लास कराना, अभी क्लास चालू होगा, कोई एक टॉपिक होगा कोई तो अपना पॉजिटिव थिंकिंग या इस तरह का, और जैसे ही क्लास चालू हुआ उसी का मोबाइल जोर से बजा। तो सीधा एक भाई खड़ा हो गया, बोला जो हमको आप सिखा रहे हो ना, पहले खुद सीखो। कैसे क्लास कराया होगा आगे पता नहीं। तो ध्यान रखना है, हल्के बनने के लिए खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म अटेंशन चाहिए। जो आज की मुरली में, जो तुम दूसरों को सिखाते हो पहले खुद सीखो, आज की मुरली में है एक जगह, जो दूसरों को सिखाते हो पहले खुद करो, याद के लिए कहा बाबा ने। तो ऐसी ये आज ये अव्यक्तवाणी का दूसरा भाग था। ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो।